संयुक्त राष्ट्र रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। अभिवादन के साथ मैं हूं महबूब खान। 11 फरवरी 2022 के बुलेटिन की हेडलाइंस। महिलाओं और लड़कियों को विज्ञान में बराबरी वाले अवसर मुहैया कराने की पुकार। कोविड-19 महामारी का खात्मा करने के लिए 16 अरब डॉलर की अपील। महासागरों से जुड़ी जानकारी स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना। दुनिया भर में खाई जाने वाली दालें युवाओं को कैसे बना सकती हैं सशक्त। और लीग ऑफ नेशंस से जुड़े लगभग 100 साल पुराने 1.5 करोड़ दस्तावेजों को डिजिटल रूप देने का काम पूरा होने के नजदीक। हम आपको याद दिलाते चलें कि मल्टीमीडिया समाचार सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर अवश्य आएं। पता है news.un.org/hi। आप हमारा न्यूज़लेटर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसके जरिए वैश्विक समाचार आपको खुद ब खुद मिलते रहेंगे। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने ऐसा वातावरण बनाए जाने का आह्वान किया है जिसमें आज की लड़कियां भविष्य की अग्रणी वैज्ञानिक व नवाचारी बने और सर्वजन के लिए एक न्यायसंगत व टिकाऊ भविष्य को आकार दें। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों की अहमियत की ओर ध्यान आकर्षित करने और उनके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के इरादे से 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने शुक्रवार को इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर कहा,
टुडे ओनली वन इन थ्री साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्चर्स इन द वर्ल्ड इज अ वुमन। Structural and societal barriers prevent women and girls from entering and advancing in science.
UN प्रमुख कह रहे थे कि आज दुनिया भर में हर 3 शोधकर्ताओं में से केवल एक महिला है। ढांचागत और सामाजिक बाधाएं महिलाओं व लड़कियों को विज्ञान में दाखिल होने और आगे बढ़ने से रोक रही हैं। और कोविड-19 महामारी ने लैंगिक विषमताएं और ज्यादा बढ़ा दी हैं, जिनमें स्कूल बंद रहने से लेकर हिंसा में बढ़ोतरी व घरों में देखभाल का बढ़ता बोझ शामिल है। ये विषमता हमारी दुनिया को ऐसी अपार प्रतिभा व नवाचार से वंचित कर रही है जिसका लाभ नहीं उठाया जा रहा है। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश के शब्द। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित विषयों यानी स्टेम में सभी स्तरों पर एक महत्वपूर्ण लैंगिक विषमता बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने वर्ष 2025 तक 193 सदस्य देशों के स्कूली पाठ्यक्रमों में महासागरों से जुड़ी जानकारी शामिल किए जाने का लक्ष्य तय किया है। यूनेस्को ने फ्रांस के ब्रेस्त शहर में एक महासागर यानी वन ओशियन शिखर सम्मेलन के अवसर पर यह घोषणा की है। कुछ और जानकारी के साथ सचिन गौड़।
वर्ष 2021 से 2030 तक टिकाऊ विकास के लिए महासागर विज्ञान का यूएन दशक मनाया जा रहा है जिसमें यूनेस्को की अग्रणी भूमिका है। इस सिलसिले में महासागरों की रक्षा को बढ़ावा देने के इरादे से अनेक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैठकों का आयोजन और जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। यूएन एजेंसी ने गुरुवार को बैठक के दौरान नीति निर्माताओं और पाठ्यक्रम विकसित करने वाले विशेषज्ञों के लिए महासागरों से जुड़ी जानकारी प्रदान करने वाली शिक्षा सामग्री साझा की है। इस सामग्री में शैक्षणिक श्रृंखला के हर स्तर पर महासागर शिक्षा को एकीकृत करने के लिए सभी जरूरी बातों का ध्यान रखा गया है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों का मसौदा तैयार किए जाने से लेकर शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जाने वाली सामग्री की तैयारी तक। यूनेस्को का मानना है कि इसके जरिए सभी सदस्य देशों के पास एक समान ढंग से आगे बढ़ने, महासागरों को शिक्षा के केंद्र में रखने और छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करने का अवसर होगा।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश समेत कुछ अन्य विश्व नेताओं ने वैश्विक महामारी कोविड-19 का वर्ष 2022 में खात्मा करने के इरादे से बुधवार को न्यायसंगत उपचार, निदान व वैक्सीन वितरण पर केंद्रित व्यवस्था एक्ट एक्सेलरेटर के लिए 16 अरब डॉलर की रकम इकट्ठा करने की एक अपील जारी की है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा कि कोविड-19 महामारी का अंत करने के लिए ये जरूरी है कि टीके, परीक्षण और उपचार हर किसी के लिए उपलब्ध हों। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी WHO के मुखिया डॉक्टर टेड्रोस एडिनोम गेब्रेसस ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी का खात्मा करने के लिए हमारे पास संसाधन मौजूद हैं।
Where people have access to those tools, this virus can be brought under control. Where they don't, this virus continues to spread, to evolve, and to kill.
डॉक्टर टेड्रोस कह रहे थे कि जहां भी लोगों के पास ये संसाधन या औजार उपलब्ध हैं, वहां इस वायरस पर नियंत्रण किया जा सकता है। जहां ये संसाधन उपलब्ध नहीं है, वहां ये वायरस फैलना, अपने रूप बदलना और लोगों की जान लेना जारी रखेगा। इस महामारी को एक वैश्विक स्वास्थ्य आपदा के रूप में खत्म करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती हर एक देश में सभी लोगों को ये संसाधन उपलब्ध कराना है। डॉक्टर टेड्रोस के शब्द। ध्यान दिला दें कि ACT एक्सेलरेटर योजना कोविड 19 के परीक्षण, उपचार और टीकों का त्वरित वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अप्रैल 2020 में शुरू की गई थी। संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस मनाता है और इस वर्ष इस दिवस का विषय है कि ये पौष्टिक खाद्य पदार्थ टिकाऊ व्यावसायिक खेतीबाड़ी प्रणालियां प्राप्ति में युवाओं को सशक्त बनाने में किस तरह मदद कर सकता है। दालें दुनिया भर में अपार व्यंजन श्रृंखलाओं के लिए तो अहम हैं ही। कुछ और जानकारी के साथ प्रतिष्ठा जैन।
संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO के महानिदेशक क्यू डोंग्यू ने इस मौके पर अपने ट्वीट संदेश में युवाओं से कृषि आधारित खाद्य प्रणालियों में बदलाव को ज्यादा टिकाऊ बनाने के लिए समर्थन देने का आह्वान किया, जिससे टिकाऊ विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद मिलेगी। एजेंसी के अनुसार दालों के माध्यम से आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय अवसर उत्पन्न होते हैं, मगर दाल आधारित खेतीबाड़ी को अपनाने के लिए युवजन को हर रणनीति के केंद्र में रखा जाना होगा। एजेंसी ने विश्व दाल दिवस के अवसर पर एक वक्तव्य में कहा कि युवजन परंपरागत खेतीबाड़ी तकनीकों और नई तकनीकों के बीच एक पुल का काम कर सकते हैं। दुनिया भर में मूंग, मसूर, उड़द, अरहर, चना, मटर की दालें मशहूर हैं और इनका बड़े पैमाने पर उपभोग होता है। दालें पौष्टिकता से भरपूर होती हैं और उनमें प्रोटीन की उच्च मात्रा होती है, जिनके कारण दालें ऐसे क्षेत्रों में प्रोटीन का आदर्श स्रोत होती हैं जहां किन्हीं कारणों से मांस या दुग्ध पदार्थ उपलब्ध नहीं होते हैं।
संयुक्त राष्ट्र के जिनीवा कार्यालय ने लीग ऑफ नेशंस यानी राष्ट्र संघ के करीब 1.5 करोड़ दस्तावेजों को डिजिटल रूप में सहेजने का विशाल कार्य 2017 में शुरू किया था, जो अब पूरा होने के नज़दीक है। इनमें से ज़्यादातर दस्तावेज 100 साल पुराने और बहुत नाजुक हालत में थे। सुनिए अंशु शर्मा का ये फीचर।
2016-17 में शुरू हुई इस परियोजना के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के पूर्ववर्ती विश्व संगठन राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशन से संबंधित 15 अरब दस्तावेजों को 250 टेराबाइट डेटा के रूप में तब्दील किया गया है। पत्रकार, छात्र, राजनयिकों समेत सभी लोग अब ऑनलाइन ही जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र पुस्तकालय और अभिलेखागार के अनमोल दस्तावेजों से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में महानिदेशक तातियाना वालोवाया ने कहा,
हम कभी कभी यह नहीं समझते कि ये दस्तावेज हमारे वर्तमान कार्य के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हम लीग ऑफ नेशंस के बारे में, इतिहास के बारे में सोचते तो हैं, लेकिन अक्सर वर्तमान चुनौतियों के उत्तर और समाधान खोजने के लिए अतीत से सबक लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए यह संस्थागत स्मृति इतनी महत्वपूर्ण है।
इसमें लीग ऑफ नेशंस का चित्र संग्रह भी शामिल है, जो 1919 से 1946 तक इस संस्था की गतिविधियों की यादगार तस्वीरें पेश करता है। जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के संस्थागत स्मृति विभाग की प्रमुख ब्लेंडाइन ब्लूकर्स लुइफर्ट ने बताया,
इससे पहले लोगों को जानकारी इकट्ठा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से यहाँ आना पड़ता था। प्रति वर्ष लगभग 150 लोग जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की लाइब्रेरी से जानकारी हासिल करने आते थे। दिसंबर 2021 में इस मंच की शुरुआत के बाद से 1200 से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन इस मंच से जानकारी हासिल की, तो यह वास्तव में बहुत बड़ा अंतर है।
2022 के अंत तक समस्त दस्तावेजों को डिजिटल रूप देने का कार्य पूरा हो जाएगा और वो ऑनलाइन उपलब्ध होंगे।
तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब महबूब खान को अनुमति।